ओम शांति।
24 फरवरी 2017 की अव्यक्त मुरली से प्रश्नोत्तर। 13वां प्रश्न, इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? किसका है? भाई बहनों का भी बोला एक जगह, तो बाप का श्रृंगार इस देश में सबसे बड़ा है। क्यों और कैसे? शिवरात्रि में उसी का श्रृंगार होता है, और क्यों? वो सबका श्रृंगार करता है, इसलिए उसका श्रृंगार सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा है, इसके लिए उसका श्रृंगार सबसे बड़ा है। वो सबका उद्धार करता है, इसके लिए सबसे बड़ा श्रृंगार उसका है। कलयुग को सतयुग, और उसकी शक्तियों से बच्चों ने श्रृंगार किया, इसके लिए उसका श्रृंगार सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल के बैठा है। फ्री। और इस देश में अभी सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है? इस देश में, किस देश में? भारत में सबसे शुरुआत में पूजा किसकी चालू हुई थी? सबसे पहले शिव की पूजा चालू हुई थी। कृष्ण और राम और ये सब तो बहुत बाद में है। ओरिजिनल शिव की पूजा है भारत में, शिवलिंग की पूजा। मोहिंजोदारो और हरप्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो गायन है, जहां से आर्य सारे निकले, आर्यन जिसको कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिवलिंग के अवशेष मिले, किसी देवी देवता के नहीं। देवी देवता तो बहुत बाद में आए। पूजा सबसे अनादि द्वापर से जो पूजा सबसे पहले जिसकी चालू हुई, वो शिवलिंग की पूजा चालू हुई। बुद्ध जब थे, चंद्रगुप्त मौर्य जब थे, तब कहां किसी देवता की पूजा है ज्यादा? शिवलिंग की पूजा मात्र हमेशा है। सारे जो भी है, सबसे शुरुआत में जो पूजा चालू हुई वो शिव की चालू हुई, बाद में सभी देवी देवता आ गए। हाँ, शिव मंदिर होता ही था राजमहलों में, बाकी तो कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, राधे कृष्ण की पूजा, जब से ये तुलसीदास वगैरह आए, उन्होंने फिर भक्ति मार्ग का आरंभ किया और उसको बढ़ाया, तो तब से उन सब की पूजा ज्यादा होने लगी। राम ने भी पूजा की। तो शिव का अनादि स्थान है भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में। शिव की पूजा क्यों की जाती है? वो आशुतोष है, इजीली प्लीज्ड, इसके लिए सबसे अधिक पूजा शिव की होती है। और शिव को ही शंकर माना जाता है संस्कृति में। तीन नाम है, शिव, शंकर और शंभू, मुख्य रूप से तीन नाम, बाकी तो बहुत सारे हैं, रुद्र, पशुपतिनाथ, भोलानाथ, महादेव, भूतनाथ, बहुत सारे नाम है शिव के। तो एक कारण है कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाता है, आशुतोष है, वो जल्दी आशीष देता है। एक दूसरा, शिव से जुड़ी हुई मुख्य बातें पूरे भारत में, परंतु शिव का सब जगह है। भारत में पंच देवताओं की पूजा है, शैव शिव की पूजा करने वाले, शाक्त शक्ति की पूजा करने वाले, वैष्णव विष्णु की पूजा करने वाले, गणपत्य गणपति की पूजा करने वाले, और सूर्य की पूजा, पंच देवताओं की मुख्य रूप से पूजा है। और जो शिव के भक्त होंगे वो शाक्त जो होंगे वो शैव भी होंगे, साउथ इंडिया में ज्यादा शैव है, नॉर्थ में वैष्णव, परंतु सब जगह है, परंतु मात्रा अधिक शैव, कश्मीरी शैव वो थोड़े दूसरे। तो पंच देवताओं में से मुख्य जो है शिव की पूजा, और एक तो ये कि भारत भर में मंदिर है, सबसे पहले उसकी पूजा चालू हुई, और शिव की उसको स्वयंभू बोलते हैं। अच्छा, और वो भोलानाथ है, जल्दी प्रसन्न होता है, जल्दी वरदान देता है, फटाफट कुछ भी मांगो तो दे देता है, किसको भी वरदान दे देता है, जो भी उसकी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। फिर बाद में उधर दिखा है विष्णु को बहुत संभालना पड़ता है, उधर किसको भी वरदान दे दो और फिर वो उपद्रव करता है राक्षस, फिर उधर अवतार लेना पड़ता है और फिर उसको ठीक करना पड़ता है। तो ये एक और अनकन्वेंशनल है, वो अपरंपरागत है, वो उसकी पूजा में ज्यादा झंझट नहीं है, जैसे विष्णु के इसमें यही चाहिए वो ही चाहिए, कोई खास नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा ही कूल कूल गाय तो ये जो है थोड़ा सा कूल है, मतलब इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, सस्ता है और जल्दी भी ठीक कोई भी उसको प्रसन्न कर सकता है। तो अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, वो अपरंपरागत, फटाफट ठीक होता है। फिर वो लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, उसके सारे वो नंदी और ये सब, बाकी वो के इतने नहीं है, इसके बहुत है, उसको शरीर का भी देवता कहा जाता है, शिव को लॉर्ड ऑफ द बॉडी, क्योंकि वो भी अपने शरीर को सब इससे लगा के रखता है ना, शंकर जो दिखाया है भक्ति मार्ग में, विरोधाभासी चरित्र है उसका एक रीति से, एक तरफ तो चंद्रमा है शीतलता का प्रतीक, तो दूसरी ओर विषधर सांप भी है, एक तरफ वो गृहस्थी है तो दूसरी तरफ वीतरागी और वैरागी और सन्यासी भी है, एक तरफ वो जल्दी प्रसन्न होने वाला है तो दूसरी तरफ भयंकर रुद्र भी है। वो भी एक कारण है उसका कि वो एंगर इज एक्सेप्टेबल, क्रोध जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो खुद भी क्रोध करता है ना बीच बीच में, इसके लिए एक तरफ वो गृहस्थी है तो दूसरी तरफ वो कामजीत है, कामारी है, काम को मारने वाला है वो, शिव भक्ति में कामारी नाम है उसे, उसका उसका क्रोध वो विनाश का देवता है, ये भी कहा हुआ है। और ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड, वो बहुत ध्यान रखता है पार्वती का, वो गृहस्थी है ना, एक बार शिव बाबा का भी मुरली में आया था ना, शिव बाबा का गृहस्थ जीवन, सबसे बड़ा गृहस्थी कौन है संसार में, बाबा ही है, तो वो गृहस्थी भी है और इज अ गुड हस्बैंड, और उसका फैमिली मैन है वो उसकी अपनी फैमिली है ना पूरी, पत्नी है, बच्चे है, बेटी है ना वो, कमल सुंदरी, कौन, अशोक सुंदरी उसकी बेटी का नाम है, पूरा परिवार है उसका। तो वो गृहस्थी भी है तो वीतरागी भी है, वैरागी भी है, शमशान निवासी भी है, आदित्य है वो, रुद्र जो है आदित्य है, और अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग मिडल एंड अर्थ एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड, बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड, और तपस्या में लीन रहता है, अपने काम से काम रखता है तो ये सब जो शंकर के ऊपर थोपा हुआ है भक्ति में, वो आया कहां से, सब यहीं से आया है, उसने कर्तव्य ऐसे विनाश का कर्तव्य है उसका, यहाँ पर संगम पर, इसके लिए उसको विनाश का देवता, त्रिदेव में उसको विनाश का देवता कहा जाता है। फिर वो बहुत शक्तिशाली भी है, इमेंसली पावरफुल, सदा ऊंचाई पर रहता है, पर्वत कैलाश पर्वत तिब्बत, उसके नीचे पाताल लोक है, ऐसा भी मानते हैं, ये सब दूसरी बातें हैं, अमर कथा सुनाता है, और पशुपतिनाथ जो कहा ना, पशुओं का भी वो देवता है, देव देवों का देव है वो, कोई साधारण देव नहीं है, देवों का देव विश्वनाथ। हाँ बाना बरात, हाँ विष्णु के एक शंकर की बरात, और 12 ज्योतिर्लिंग भारत में, बैद्यनाथ भी वही है। तो उसके असंख्य नाम भी है, असंख्य यादगार भी है, उसकी पूजा रूप में भी, उस साकार रूप में भी होती है, तो लिंग के रूप में भी होती है, शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग का श्रृंगार भी बड़ा होता है, और गिनती नहीं अनगिनत, हर धर्म में अलग अलग नाम है उसके, और गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम है। तो इस देश में सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है, तो शिव का है। हाँ पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र, फिर वो रुद्राष्टकम लिंगाष्टकम, ये सब अलग 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 मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र, ये सब उसको प्रसन्न करने के मंत्र है सारे। पंचामृत उसको दिया जाता है, दूध दही घी शहद और क्या, नहीं पंच पंचामृत में वो नहीं है, दूध है शक्कर, दूध दही शहद शक्कर, हाँ उसको उसे नहलाते पंचामृत से। हाँ उसका भभूति का बड़ा गायन है ब्राक, और तो ये सारी बहुत सारी बातें उससे जुड़ी हुई है। फिर उसका तंत्र में भी उसे भैरव कहा जाता है, भारत में तंत्र निकला है ना, उसमें उसका नाम भैरव, धीरे धीरे बौद्धिज्म के साथ वो जुड़ा, बंगाल में इस तरह से उसको तंत्र विद्या के साथ जुड़ा, और सारे भारत में फिर वो फैला। अघोरी जो होते हैं वो भी तो उसी से निकले हुए हैं सारे, शैव शैव मत। तो शिव पुराण, उसके अपने अपने अलग पुराण बने हुए हैं, उसमें उसकी लीलाओं का वर्णन है। तो इस देश में सबसे बड़ा श्रृंगार किसका है, शिव का है। भक्ति में भी है, क्योंकि उसने संगम पर ऐसे कर्तव्य किए हैं, एक एक कर्तव्य उसके उधर यादगार रूप में हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान नॉलेज और विजडम का भी देवता कहा जाता है, कहीं संपूर्ण ज्ञान है उसके पास, संपूर्ण विवेक भी उसके पास है। वो उसका खुद का जीवन जो दिखाया है, वो गृहस्थ में है, संसार में है, परंतु संसार से अलिप्त है, कोई चीज उसे स्पर्श नहीं करती, देवताओं को भी मदद करता है, संकट भी क्रिएट करता है पर देवताओं के लिए। वही सबसे बड़ा भक्त तो उसका वही था रावण, उसका भी तो एक बार दबा दिया था उसने। हाँ उसके असुर उसके भक्त ज्यादा थे, असुर जो थे विष्णु के शत्रु है, और उसके सारे भक्त है, क्योंकि वो ये नहीं देखता है मित्र है कौन है क्या है किस लिए तपस्या कर रहे, जो भी आ जाए उसके पास प्रसन्न हो जाता है। तथास्तु। तो ऐसा है। अगला प्रश्न है चौथा, कॉमन हार तो पहनते ही है, कॉमन बात है, लेकिन इस माला का मतलब अच्छा है बढ़िया है कैसे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारे जुड़े हुए हैं। ये जो माला है इसका मतलब अच्छा है, ये माला कोई स्थूल माला नहीं है, जो मालाएं हम गिना रहे हैं, जो मालाएं गार्लैंड्स बाबा ने हमारे गले में पहनाई है, इनका मतलब इनका अर्थ गुणार्थ जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सूक्ष्म है यहाँ सब कुछ, बढ़िया है, बेटर बाकी सबसे, ये माला सबसे अच्छी माला है, इसे कोई छीन नहीं सकता, इसका कोई इसे पहनने से कोई भारीपन नहीं, कोई डर नहीं, और ये बढ़ती जाती है अदृश्य माला है ये। सभी मालाधारियों की शक्ल कैसी है और क्यों है, कंप्लीटली रेड, फेसेस कहते हैं कंप्लीटली रेड, लाल लाल, लाली तेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखना मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो वो कैसा देख रहा है सबकी शक्ल, लाल और लाल देख रहा है। लाल क्यों देख रहा है, लाल किसका प्रतीक है, रेड सिंबलाइजेस, लाल करेज का प्रतीक है, सैक्रिफाइस का प्रतीक है, ब्लड गुस्से का भी प्रतीक है, एंगर का भी प्रतीक है। बहुत सारे फ्रेजेस इडियम्स जो इंग्लिश में बने हैं वो लाल शब्द अर्थात गुस्सा, एंगर, धोखा, डेंजर का भी प्रतीक है लाल, राइट, डेंजर, धोखा। तो करेज का भी प्रतीक है, क्रिश्चियनिटी में लाल प्रतीक है ब्लड ऑफ क्राइस्ट। स्टॉप का भी प्रतीक है वही डेंजर, स्टॉप, उसका भी प्रतीक लाल ही है। बौद्धिज्म में बौद्ध महात्मा बुद्ध जब संपूर्ण संबोधि एनलाइटमेंट को प्राप्त हुए थे तब पंच कलर जो निकले थे, पांच रंग के कलर, उसमें एक कलर लाल था। इसके लिए बौद्ध धर्म में भी लाल का महत्व है, हर धर्म में अलग अलग रीति से उसको लिया हुआ है। हाँ, बिंदु, कुंकू, लाल, बिंदी, जैसे ही तिलक, एक रीति, एक सौभाग्य का तिलक। तो यहाँ पर क्या लाल दिख रहा है बाबा को, मालाधारी है उनकी जो शक्ल है, परंतु कहीं कहीं जॉय और प्लेजर का भी प्रतीक है लाल। कुछ सारी रेड क्रॉस और ये जो इंटरनेशनल संस्था है उनको, उन्होंने भी लाल पूजा में, क्या स्वस्तिक कैसे निकालते हैं, लाल से निकालते हैं वो लाल। बहुत सारे देशों के फ्लैग, पॉलिटिकल अर्थ भी है लाल का। काली कौन, काली महाकर्म परमधाम भी लाल है। तो यहाँ शक्ल लाल है अर्थात सैक्रिफाइस का प्रतीक लाल है, करेज का प्रतीक लाल है। ये दो चीज हम ले सकते हैं, क्रोध तो नहीं परंतु लाल, करेज और सैक्रिफाइस। खुशी भी लाल, खुशी का भी जॉय, प्लेजर, ये भी लाल से दिखाते हैं। लाडले बच्चों को भी लाल कहते हैं, मेरे लाल, वो शब्द है। दूसरा यहाँ रंग, रंग की बात है। तो लाल चेहरा है अर्थात यहाँ बाबा कह रहे हैं सभी खुशी से लाल है, क्योंकि मालाएं पहनी हुई है उसके वजह से लाल है, करेज है इसके लिए लाल है, त्याग किया है इसके लिए लाल है। किससे, हाँ हाँ स्क्रीन का रिफ्लेक्शन, वो तो जो कलर का स्क्रीन होगा उस कलर का होगा। तो सभी के चेहरे लाल है अर्थात सभी खुश है, सभी प्रसन्न है, सबके अंदर रूहानियत है, ब्यूटीफुल है। यहाँ मतलब एक अर्थ दूसरे शाब्दिक अर्थ है, एक दूसरा भावात्मक अर्थ है। लाल है अर्थात बहुत सुंदर है, मेरे लाल, आकर्षक है, शोभनिक है, सुंदर है, उस अर्थ से भी। लाल गुलाब का है, गुलाब का प्रतीक है प्रेम, लव का प्रतीक भी तो लाल ही है ना। रेड रोज देते हैं ना एक दूसरे को, प्रेमी, कौन सा गीत तो लाल न्यारे होकर क्या देखना है और क्यों, डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर क्या देखना है, क्या क्या देखना है, स्वयं की माला को देखना है, दूसरों की माला को देखना है। और ये जो एक बात कल कही थी योग के ड्रिल की, कि बाबा हमें माला पहना रहे, इसमें हम दूसरी एक ड्रिल ऐड कर सकते, हम दूसरों को मालाएं पहना रहे, ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, पवित्रता की, सर्व ब्राह्मण आत्माओं को या विश्व की सभी आत्माओं को हम पहना रहे ये मालाएं। तो न्यारे होकर क्या देखना है, एक तो माला देखना है, और बाबा को न्यारे होकर देखो, और न्यारे होकर ये देखना है कि वो न्यारा होकर कैसे पाठ बजाता है, साक्षी होकर वो कैसी सभा को सब देखता है, वैसे जैसे वो साक्षी होकर सबको देखता है हमें उसको साक्षी होकर देखना है। ये एक अभ्यास तब करना है जब बाबा आते हैं डायमंड हॉल में। बाबा वहां बैठे रहते और सारी सभा को कैसे साक्षी होकर देखता है, वो कोई लेना देना नहीं है उसको, परंतु इतना प्यार का भी स्वरूप है, टोटल डिटैच भी है। जैसा कहा शिव का विरोधी भाषी चरित्र है भक्ति मार्ग में, एक तरफ गृहस्थी दूसरी तरफ वैरागी, इधर भी सबके बीच में प्यार भरी मुरली, बार बार मेरे बच्चे वो सब चल रहा है, परंतु फिर भी वो डिटैच है, संपूर्ण डिटैच है वो सब। तो उसको साक्षी होकर देखना, डिटैच्ड होकर देखना कि वो डिटैच कैसा है, ये एक अपने आप में एक योग अभ्यास है। कैसे वो विश्व को देखता है, विश्व की सारी आत्माओं को देखता है, कैसी विश्व की महानतम आत्माओं से मिलता है, सबको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, परंतु फिर भी ऐसे दिखा रहा है जैसे कि एकदम साधारण सा है। और अभी तो अपना स्वरूप उसने और ही ज्यादा साधारण बना दिया है, ताकि लोग और ही शायद पहचान ना पाए और सोचे कि ये क्या है, ये कोई भगवान है, और ही ज्यादा कंफ्यूज, और ही उसने जो मुरलियां चल रही है और ही गुड़ हो रही है, मतलब और ज्यादा ही वो मतलब छुपा रहा है अपने आप को, ताकि और ही ज्यादा जो पहचान सके पहचान लो मैं ये हूं। अवजानंती माम मुड़ा, गीता में लिखा है कि फूल्स डिराइड मी, ये जो मूर्ख होंगे वो मेरा उपहास करेंगे, वो साधारण ऑर्डिनरी स्वरूप उसका है, इतना उसने अपने आप को और ही ज्यादा छुपा रहा है, जो बोलना नहीं चाहिए वो भी तो ऐसा उसका सूक्ष्म स्वरूप है, गुड़ स्वरूप है। तो न्यारे होकर भगवान को देखना, न्यारे होकर स्वयं को देखना, न्यारे होकर इस जगत को देखना, इस विश्व को देखना, न्यारे होकर यहाँ की सभी आत्माओं को देखना, न्यारे होकर परिस्थितियों के खेल को देखना, न्यारे होकर संसार में जो कुछ भी हो रहा है हलचल वो सब देखना, न्यारे होकर और क्या देखेंगे, अपने भी पुरुषार्थ को न्यारे होकर देखना, संसार कैसे तमो प्रधान हो रहा है, संसार कैसे गिर रहा है, विकार कैसे बढ़ रहे हैं, वो सब भी न्यारे होकर देखना। न्यारेपन, न्यारी अवस्था एकदम मीठी अवस्था है, अनटच्ड, डिटैच्ड, कोई कमेंट्स नहीं, कोई जजमेंट नहीं, नॉन जजमेंटल स्टेज, संपूर्ण डिटैच्ड ऑब्जर्वर। खेल चल रहा है, प्ले चालू है, ड्रामा चालू है, हम स्पेक्टेटर हैं, हम बैठे हैं, हम दर्शक हैं, दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रोता है, और चल रहा है सब कुछ। तो न्यारी अवस्था, इसकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है कि क्या क्या न्यारा होकर देखना है। अपने बारे में बहुत सारी बातें आएगी, अपनी कमजोरियों को भी देखना, अपनी विशेषताओं को भी देखना, अपनी सेवाओं को भी देखना, दूसरों को भी न्यारा होकर देखना, कमियां देखनी तो नहीं है पर दिखती तो है, आंख तो बंद नहीं कर सकते ना, उसको भी न्यारा होकर देखना और उससे सीखना कि ऐसा भी हो सकता है। आत्माएं इतनी ऊंची चली गई फिर गिरी, ये सदियों से होता है अध्यात्म में। कितने सन्यासी थे, सन्यास में थे तो गृहस्थ आकर्षित करने लगा, सन्यास को छोड़ा गृहस्थ में घुसे, गृहस्थ में घुसने के बाद वहां पर डूब गए गृहस्थ में और फिर से सन्यास खींचने लगा, फिर से गृहस्थ को छोड़ के फिर सन्यास में आए, फिर सन्यास में आने कर फिर वो खींचने लगा इधर से उधर, उधर से उधर। पेंडुलम और शटल, जैसे वो बैडमिंटन का होता है ना शटल कॉक, इधर से उधर उधर से उधर जाते रहता है, वैसे चित्त यहां से वहां और वहां से वहां डोलते रहता है। वो महात्मा बुद्ध थे जिन्होंने राजसी वस्त्र धारण करके पहुंचे नदी के पास, वहां आए राजसी वस्त्र को छोड़ा और सन्यास वस्त्र धारण करके आगे चले। अभी जो बौद्ध धर्म है विश्व भर में उसकी अनेक असंख्य शाखाएं हैं, उन सन्यासियों को आकर्षण होता है गृहस्थी का, वो सन्यासी के वस्त्र धारण करके नदी के पास आते हैं, सन्यासी के वस्त्र वहां छोड़ते हैं और गृहस्थ के वस्त्र धारण करके संसार में घुसते हैं। बुद्ध ने पीछे देखा और कहा कि पीछे केवल आग ही आग है जो सारा उनका। अभी जो वहां के सन्यासी है जो बाहर निकलते हैं उस मठ से, वो देखते हैं उस मठ में आग ही आग है और संसार ज्यादा आकर्षित कर रहा है। तो वहां से निकलते और संसार में घुसते हैं, वहां संसार में आते हैं, वहां अपना एक फ्रस्ट्रेशन, विकारों में घुसने के बाद ब्रह्मचर्य खींचता है, फिर इससे इधर इधर और इधर इधर और उधर, ये गति है मनुष्य मन की। तो अगला प्रश्न है, आप विजयी कब बन सकते हो? जब माला पड़ी रहे, हार पड़ी रहे, तो माया की हार हो, माया भाग जाएगी। ये माला यदि हो तो, कितनी सूक्ष्म माला है ये, दिन भर में कितने सारी चीजें जो इस माला को खींचकर लेके जाती है। माला कभी गिर के नीचे गिरती है तो कभी उड़ जाती है, अदृश्य हो जाती है, वेपोराइज हवा में वाष्पीभूत, वेपोराइजेशन, कभी मन के नीचे गिर जाते हैं, कुछ रहते हैं कुछ गिरते हैं, कुछ हवाओं के झोंके से उड़ जाते हैं, कितनी सारी बातें हैं। कभी धूल मिट्टी लग जाती है, आंखों के झोंके से भी उड़ जाते हैं। तो ये जो माला है इसको पहन के रहना है। अर्थात क्या? अर्थात ज्ञान, योग, जितनी बातें सारी गिनाई माला से संबंधित, वो सारी स्मृति में रहे। भक्ति में शब्द था स्मरण, ज्ञान में शब्द है स्मृति। भक्ति में स्मरण करते थे, यहां है स्मृति। स्मृति में रहे, वो अवेयरनेस, वो वॉचफुलनेस, वो माइंडफुलनेस, उस अवेयरनेस के साथ सारे कर्म किए जाए। कर्म श्रेष्ठ हो, बोल श्रेष्ठ हो, स्मृति श्रेष्ठ हो, सब कुछ महान। पुरुषार्थ का स्मरण स्मृति निरंतर रहे, समय की स्मृति निरंतर रहे, तो तब विजयी बन सकेंगे। इतना आसान काम नहीं है ये विजयी बनना, इसमें पुरुषार्थ चाहिए। केवल यहां आ गए या अविवाहित रह रहा है कोई तो विजयी बन जाए, ऐसा नहीं है। ये तो प्रिलिमिनरी स्टेजेस है केवल, ब्रह्मचर्य और ये सब, इसमें तो बहुत आगे बढ़ना है। तो एक एक विकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, कहां एक तरफ तो अहिंसा की बात है और दूसरी तरफ शत्रुता का भाव जागता है मन में, एक तरफ प्रेम की बात है तो दूसरी तरफ घृणा जागती है, एक तरफ संपूर्ण ब्रह्मचर्य तो दूसरी तरफ काम जागता है। उन सूक्ष्म भावों को समझना, माइंड किस तरह काम करता है, साइकोलॉजी ऑफ माइंड, पेंडुलम की तरह कैसे डोलते रहता है यहां से वहां, वहां से, कैसे उसको स्थिर कर दे, वही पुरुषार्थ है। बाबा को ऐसे फंक्शन में पतली सी माला, थिन गार्लैंड भी बहुत अच्छा लगता है। पतली सी माला का क्या अर्थ है, क्या गुणार्थ है, कोनोटेशन क्या है, व्हाट इज द कोनोटेशन ऑफ थिन गार्लैंड, अर्थ क्या है, क्या लिखा है उत्तर? कम गुण है, छोटे गुण है, ज्यादा गुण नहीं है, विशेषताएं कम है, गुण कम है, कम पुरुषार्थ कम करते हैं, नए से क्या संबंध पुरुषार्थ का, चेकिंग कम है और क्या क्या कम है, ज्ञान कम है, गुण कम है, शक्तियां कम है, पुरुषार्थ कम है, रियलाइजेशन कम है, डिप्रेशन ज्यादा है। अगले संडे के मुरली में एक शब्द छोड़ना है, एक शब्द धारण करो, डिप्रेशन डिप्रेशन इसको छोड़ो और रियलाइजेशन धारण करो और कॉम्प्लेसेंसी जो है वो ठीक है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, और डीप रियलाइजेशन, डिप्रेशन की जगह डीप रियलाइजेशन हो, और कम है, पतली माला अर्थात नहीं, पतली माला महीन तो नहीं, महीन माला तो वो तो अच्छा शब्द है, ये निगेटिव अर्थ है यहाँ। पतली माला अर्थात सब चीजें कम है, ज्ञान कम है, गुण कम है, खजाने कम है, धारणाएं कम है, पुरुषार्थ कम है, इंटरेस्ट ही कम है ज्ञान में, क्या करें, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या सुननी है मुरली, सब तो पता है, साकार तो सब पता ही है, अव्यक्त में है थोड़ी एक हाथ दो बातें आ जाती है, पर वो भी क्या, थोड़ी ना उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, एक ही तो है बात आखिर में, सब कुछ तो एक ही, आत्मा समझ के बाप को याद करो, और क्या झंझट, वो तो कर ही रहे। हाँ, तो ये 18वां प्रश्न है, बाकी प्रश्न कल लेंगे, 6 प्रश्न और बाकी है मुरली से। तो पतली सी माला, हमें ये चेक करना है कि हमारी पतली माला धागा मजबूत है, और धागा ही दिखाई दे रहा है, धागा ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, फूल कम है, पर फूल भी ज्यादा चाहिए। एक दिन मुरली में छानना, एक अव्यक्त वाणी, किसी की माला पैरों तक है, किसी की लड़िया लगी हुई है, किसी की गले तक है, किसी की डबल है, वो माला की ड्रेस बनी हुई है किसी की, चित्र निकाला था शायद। तो इस तरह से पतली माला ना हो, बाबा को अच्छी ही लगती है, बाबा को वो भी अच्छे लगते हैं जो पुरुषार्थ भी नहीं करते, बाबा ने कहा वो भी बाबा को अच्छे लगते हैं, वो उस अर्थों से अच्छे नहीं लगते, उनको एनकरेज करने के लिए, इसलिए वो, नहीं तो वो तो दुखी हो जाएंगे जिनकी पतली माला है, आ ही जाएगा, पॉजिटिव ये है उसका, ही इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक है वो, कि इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी लेफ्ट बिहाइंड, वो भी जरूरी है, वो भी देख लेता है कि उधर भी तो जरूरी है, सारे राजा बन जाएंगे तो उधर कौन करेगा राजाओं की सेवा, पानी कौन भरेगा, उसे पूरा मैनेज करना है, संगम युग एज वेल एज सतयुग, दो चीजें उसको एक साथ देखनी होती है, सेट करनी है पूरी, उधर की सेटिंग भी तो अभी चालू है ना, तो इसके लिए ये सब होगा। ओम शांति। हाँ, वो उतना ही बहुत है, भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, स्वीकार कर लिया। संडे के मुरली में बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, अगर डिप्रेस्ड होना है जरूर हो, पर कब होना, जब द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग चालू हो गया ना, तब से डिप्रेशन चालू करना अपना। जब द्वापर खत्म हो जाएगा और कलयुग चालू हो जाएगा, तब से भले डिप्रेस्ड हो जाओ, पर अभी मत हो, अभी तो गाना, नाचना, सोना, ये काम करो। ओम शांति। सोना अर्थात आश्चर्य थी।